अपने आप सब चल जाते, उनके लिए कुछ ये नहीं करना पड़ता है, देखना सुनना ये सब अपने आप अपने खिड़क में सभी पहुंच गए। और वहां जाते ही अपने बच्चों के लिए रंभाने लगे, बताने लगे। इधर में वाले लोग सब प्रस्तुत थे उनको दूहने के लिए, किंतु कोई भी गाय दूहने नहीं दे रही। वो कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे छोड़ भी दिए हैं, किंतु बच्चों को अपने स्थानों के समीप नहीं आने दे रहे। खबर गई इधर कृष्ण को स्नान करा रही हैं यशोदा मैया, और सभी माताएं अपने अपने बच्चों को स्नान करा रही, उनको अलंकार इत्यादि से भूषित कर रही। इतने में खबर आई कि गाय दूध नहीं दे रही, बच्चे डकर रहे हैं, मैया भी डकर रही है। सभी कृष्ण की तरफ में, घर के तरफ में उनकी दृष्टि है, गायों की भी बच्चों की, और जितने ग्वाल बाल उनको दूहने के लिए प्रस्तुत है सभी कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं बलदेव जी। इसलिए कृष्ण जल्दी से यशोदा मैया ने उनको स्नान इत्यादि विभूषित करके और श्रीमती राधिका के दिए हुए मनोहर लड्डू और अमृत केली इत्यादि जो वहां से लाई थी, कोई सखी रति मंजरी इत्यादि उनके द्वारा रखा था, उन्होंने उनको खिलाया। और खिला करके कृष्ण ने बोले कि भैया अभी जल्दी से जाना है मुझे खिड़क में। बस वो कृष्ण बलदेव को लेकर के, सखाओं को लेकर के फिर खिड़क में। ये तो हुई शाम की लीला। वो क्या हुई संध्या
प्रदोष,
सायं सायं लीला। इसके बाद में प्रदोष। अब कृष्ण गो को दोहन करके हजारों हजारों घरों में दूध भिजवा रहे हैं, कांवर पर कांवर आ रही हैं भर भर करके, और दोना समाप्त नहीं हो रहा है। यशोदा मैया बार बार उनके लिए रास्ता देख रही है, किसी को भेजा कि जल्दी से उनको जाओ, नंद बाबा यहाँ पर प्रसाद के लिए प्रस्तुत हैं, यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय में कृष्ण वो दोहन और दूसरों से भी करा करके और धीरे 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 समस्त दूध को लेकर के और अपने पहुंच करके तब तक रसोई एकदम तैयार है, पूरी रसोई। नंद बाबा और उपानंद जी और सब ग्वाल बाले और कृष्ण के सब सखा लोग यहां पर उपस्थित हो गए, और उनको बड़ी रंग के साथ में उनको खिलाया गया। नंद बाबा ने एक को अपने दाहिने तरफ में बलदेव को और बाएं तरफ में कृष्ण को भी खिला करके, पहले उनको बलदेव जी को खिलाते हैं और फिर उसको लेकर के कृष्ण को खिलाते हैं। उनका पेट भर जाने के बाद में अपने भी कुछ बड़े को जाने पर अलग अलग उनको बैठा देते हैं, उनको भी खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं, और सभी लोग उसमें बड़ा आनंद करते हैं। जब खाना पीना हो गया तब तक बहुत बार पर नटों की भीड़ आ गई है, भातों की भीड़ है, बड़े बड़े गुणी गणितज्ञों और संगीतज्ञों की भीड़ लग गई, और अच्छे अच्छे लोग सब वहां पर आए। वहां पर ये आ गया स्निग्धकंठ और मधुकंठ, ये लोग अपनी कथाएं सुनाने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो, कृष्ण की बीती हुई लीलाओं को मानो आज ही ये लीला संपन्न हुई है इस रूप में कहते हैं। और ये लोग भी समझ जाते हैं, माने विभावित हो जाते हैं, अत्यंत आसक्ति के सहित सुनते हैं, मानो आज ही अभी ये लीला हुई। अघासुर का नाम सुनते हैं, उतना का लीला सुनाते हैं, और ये तन्मय होकर के सुनकर के अभी रोते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह से वो लीलाओं को सुनते हैं। अब कृष्ण जी का समय हो गया है सोने का, राधा जी के भी सोने का समय हो गया, सत्यथियां राधा जी को लेकर के सैन्य मंदिर में जा रहे हैं, और इधर में कृष्ण अपने सखाओं को लेकर के यशोदा जी के घर में अपने गृह में सोने जाते हैं। यशोदा मैया करके उनको बड़े दुलार करके स्वयं कराती है। राधा काली गणा ताम अशित अशित निशा योग्य वेशम प्रदोषे गुप्त्या वृंदो उपदेश सात अभिसृत जमुना तीर कल्पागम कुंजाम कृष्णम गोपई सभायान विहित गुण कल
उत्कलः अवलोकनं सिद्धमात्र यत्नात् आनीय संसायितम् अथ निभृतम् प्राप्तकुञ्जम् स्मरामि।
दादाजी सैन्य की लीला करते हैं, थोड़ी देर के बाद में बिंदा जी के उपदेश से यमुना के किनारे सांकेतिक कुंज में पहुंचते हैं। कभी कभी यह सांकेत बंद है, वहां नंदगांव और बरसाना के बीच ये सांकेत कुंज एक ही नहीं, वृंदावन के लिए भी संकेत कुंज बतलाया गया, ये सेवा कुंज इत्यादि, कभी दूसरी जगह कभी तीसरी जगह, जहां जहां बिंदा देवी संकेत करती हैं यहां पर ये दोनों मिलते हैं, उस स्थान के लिए कहा गया। तो यहां पर राधा जी बिंदा के उपदेश से कभी कभी सुबल जी के साथ में सांकेतिक कुंज में उपस्थित होती हैं। सीताशित निशा युक्त, सीताशित माने अंधेरी और चांदनी रात के अनुसार में अपने आभूषण और कपड़ों को धारण करते, जैसी जैसी रात होती वैसे कपड़े धारण करते, इसलिए कभी लोग काले कपड़े धारण कराते हैं, काला वेश, कभी स्वर्णिम वेश, कभी सफेद वेश, कभी कुछ धारण कराते हैं। अमावस्या और भी अमावस्या के आज पास की रात हो, अष्टमी तक के लिए अष्टमी की रात यदि अंधेरी हो तो उसको उसी रात में मान लेते हैं और अष्टमी से कम वाली तो इधर नहीं मान लेते, आनंद से वहां पर जाती हैं और उसी समय उनकी आठ स्थितियों का वर्णन किया गया। अभिचारिका वासक सज्जा उत्कंठिका कलहंकारिता विप्रलब्धा ये सब आठ अवस्थाएं वर्णन किया गया वक्त स्वामी सिंधु अथवा। इधर में कृष्णचंद्र गोप सभा में भोजन करने के पास में गोप सभा में उपस्थित होते हैं और नाना प्रकार के गुणों और कलाओं का श्रवण और दर्शन करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। नट लोग विभिन्न प्रकार का की कलाओं को प्रदर्शन करते हैं, संगीतज्ञ लोग करते हैं अपने संगीत की चर्चा और स्निग्ध कंठ कृष्ण की लीला कथाओं का ये वर्णन करते हैं, कभी मुख्य स्निग्ध और मधुग्रंथ। मातृ यत्न करिलाशय, माता जी आकर के देख लीजिए कृष्ण को नींद नहीं आ रही तो वो निद्रा देवी को बुलाती है और हे निद्रा देवी आप इसकी सेवा करें, उसको थपथपाती हुई उनको पैर भी दबा देती हैं, इस शरीर में ऐसे करते करते उनको सुला देती है, कृष्ण सो जाते हैं किंतु थोड़ी देर में फिर वो उठ जाते हैं और जहां श्रीमती राधिका जी उनके लिए प्रतीक्षा करती हैं बस वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। यहां तक हुआ प्रभु, इसके बाद में मध्यरात्रि में उनके मिलन का ये सब है। अब ये रात्रि याम अर्थात भजन की सबसे परिपक्व अवस्था, निशांत से आरंभ किया और यहां पर पहुंचे, यहां पर भजन में श्रद्धा से चले अनर्थग्रस्त अवस्था श्रद्धा से आप फिर पुनः ये अष्टम दशा में उपस्थित हुए। उस समय में चैतन्य महाप्रभु आठवें श्लोक को बतला रहे हैं, एक एक चैतन्य शिक्षा करता, एक एक श्लोक एक एक ज्ञान के लिए, ते तो दर्पण मार्जनम से लेकर के असली स्वा पादरसान पिनत्मा अदरसनान मर्म स्वाम करो दुआ यथा तथा वाचित था तुलम पठो मत प्राणा भक्त सही बना पर। चैतन्य चरितामृतकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, श्रीमती राधिका जी विरह की दशा में उद्धव से ये कह रहे हैं, माथुर विरह घातक माने प्रवास, वहां तक मिलन हुआ अब ये
धीरज अथवा कृष्ण मिल रहे हैं, ये संभोग प्रेम भजन संभोग दोनों का मिलन हो रहा है उसमें ये बतला रहे हैं। कृष्ण से श्रीमती राधिका जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, असली स्वापाद रताम सिंह अमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण की दासी हूं, उनकी चरण की सेविका हूं, वे रसक स्वरूप और आनंदमय है, सुख की राशि है, वे चाहे मुझे आलिंगन कर मुझे सुखी करें, अलिंगिया करें आत्मसात, आत्मसात मैंने आलिंगन करके मुझे अपना बना ले, अथवा मुझे दर्शन न दें और मैंने मन और प्राणों को न समझे जो मैं कितनी दुखी हूं, ये न समझे कोई भी बात नहीं, कबूती हूं मूर प्राण कभी मेरे प्राणनाथी हूं। इसके बाद में आया है ना बनी अपनी दुख सबे बन की तारी सु मोरे यदि दिले दुख तार हुई महासुख से दुख मोर दुख बड़े, मैं सब समय कृष्ण के सुख की के लिए प्रयास करती हूं अभिलाषा करती हूं, यदि वो सुख के बदले मुझे दुख दें और दर्शन दें मुझे त्याग कर दें तभी मेरे प्राणनाथ, अथवा मुझे आलिंगन करके मेरे पास न रहें सबको छोड़ करके तभी मेरे प्राणनाथ, सब अवसान मेरे प्राण, यदि हम ही छोड़ करके दूसरों को क्यों के भी पास न रहना पसंद करते हैं तो वो सुखी रहें, वो मथुरा में रहें सुखी रहें, हम यहां मर जाएंगे भले ही उनके बिना मैं तड़पती हूं, किंतु हम ये नहीं चाहते हैं कि वो मथुरा से यहां पर आए, और यदि उनको उनको छोड़ करके यहां आने में सुख है तो वो आ सकते हैं। एक लीला है भजन कार्य अवस्था सिद्धिवाद साध्य भक्ति निष्ठा अर्थात एकांत कृष्ण परतंत्रता के लिए ये बतला रहे हैं, सब समय अपने साधक की इच्छा के अनुसार में चलना, ये सबको हमको भजन करते हुए ही हमको सीखना चाहिए, चाहे लाभ कष्ट हो दुख हो उनकी सेवा का प्रत्याग नहीं हम करेंगे। जब यदि प्रहलाद महाराज की तरफ हमारी अवस्था आ जाए ना तो इसमें कितने साधक छोड़ देंगे, हो सकता है हरिदास ठाकुर की सोच 21 या कितने बाजारों में 22 बाजारों में मार खाने से हम लोग उसके पहले ही छोड़ करके चले जाएंगे घर, अभी हम चिंता करते हैं कि क्या करेंगे भविष्य में, भविष्य में किंतु सिद्ध वक्ता ऐसा नहीं सोचता, कैसी भी परिस्थिति हो किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ेगा, सब वो रुचि आने ही पर ऐसी दशा हो जाएगी, ये प्रेम की अत्यंत घनीभूत अवस्था में आने की बात ही क्या, रुचि आते ही ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि ये कह रहे हैं ऐसा तो नहीं, किंतु अपने भजन में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जहां सुविधा हो उसी में झुक पड़े ऐसा मत करो, ऐसे होने से हमारी भक्ति का हानि होगी, शुद्ध रूप में हम चलेंगे महाप्रभु के परिकर जिस पथ से चले हैं उसी पथ से चल करके हम लोग आगे बढ़े, इसलिए सुख में दुख में जैसी भी स्थिति हो, अभी प्रभुपाद जी के जाने के बाद में ऐसी परिस्थिति आई जिसमें करीब करीब 75% लोग मठ मंदिर छोड़ करके चले गए घर या कहां कहां बढ़ गए, तो गुरु महाराज जी और ऐसे ऐसे कुछ लोग रह गए, ऐसे ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ेंगे और ऐसा ही भजन करने की चेष्टा करेंगे, हम साधकों के लिए ही करेंगे, ऐसी स्थिति वाले तो भक्त लोग तो वैसे ही हैं नहीं छोड़ेंगे, मत्स्यो जदा सत्य समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्स में सदा मृतम प्रतिपादमान प्रतिपद्यमान मया तू भूयाय सफलपते गई, सर्व का कर्म परित किया गया है, सर्व कर्म किया गया है, मोरे आत्मनिवेदिया जे करे अमार सेवन अमृतत्व धर्म पाइया लीला मध्य प्रवेशिया अमा सह करे गम। भक्ति ठाकुर जी इसका श्लोक का अर्थ ये कर रहे हैं, मत्या जब मत में रहने वाले मरणशील साधक कभी जगा, जिस समय त्यक्त समस्त कर्मा समस्त कर्मों को अपवित्र समझकर या अमंगलकारी समझकर इनका त्याग कर देते हैं सब प्रकार से और निवेदितात्मा विचिकित्स और अपने को संपूर्ण रूप से तन मन वचन इत्यादि आत्मा से संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उस समय विचिकित्सितों में मैं उनकी विशेष रूप से चिकित्सा करता हूं। विचिकित्सक क्या करते हैं, उनके अनर्थों को दूर कर देते हैं सबसे पहले और शुद्ध भक्ति का प्रवेश उनमें कराते हैं, शक्ति संचार करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग दिला देते हैं, क्रमशः उनमें निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव तक उसमें प्रवेश कराते हैं। और कैसे हमारी सेवा में ये प्रवेश हो सकता है, इसके लिए विशेष रूप से उसकी चिकित्सा करता हूं, उनके हृदय को ऐसा करता हूं,
सेवा योग्य स्वरूप को प्रकट करता हूं,
जैसे किस रूप में उसकी आत्मा है, आत्मा में जो भाव है नित्य, उस भाव को मैं उदित कराता हूं जो जिसके अंदर में सेवा की भावना है और उसके लिए योग्य बना करके अपने नित्य सेवा में उनको प्रवेश। जैसे ये साखाजा दंड कारण्य वासी महर्षि और श्रुतिचरी गोपियां, श्रुतिचरी गोपियां या दंडकारण्य निवासी ये साधक जीव हैं, वे लोग भी हम लोगों की स्थिति में कभी होंगे, साधु संतों का संग पाया होगा और कर्म की गति को जान करके ये बड़ी भयानक है, उसकी गति जान करके सदगुरु पदाश्रय किया होगा उत्तम श्रेय को जानने के लिए और धीरे धीरे साधु संघ में समस्त प्रकार से सबको छोड़ दिया, जैसे भरत जी ने छोड़ दिया, नारद जी ने छोड़ दिया। दो प्रकार का छोड़ना होता है, एक स्वरूप पर छोड़ दिया जाए और दूसरा होता है बाह्य रूप में उनको छोड़ा जाए, मन से उनको उनकी आसक्ति छोड़ करके कर्म करना चाहिए। तो पहली स्थिति में आसक्ति छोड़ करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ये पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति में भक्त की भांति सब छोड़ करके, पहले की भांति में जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी और सब भक्त लोग हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो तब उनको नहीं छोड़ते, किंतु कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मा के उपदेश देने पर भी ये नारद ऋषि सनक सनंदन सनक कुमार ये लोग नहीं कर्म मार्ग में प्रविष्ट हुए, किंतु ब्रह्मा के आदेश से कपिलदेव जी के पिता कर्दम ऋषि इत्यादि संसार में आए, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, विवाह किया, प्रजाओं का उत्पन्न किया और फिर पीछे से भक्ति भी करते रहे, किंतु अंत में फिर छोड़ करके भगवान का प्रति, इसलिए पहले कर्मों में आसक्ति छोड़ करके कर्म करो जो ऐसे हैं और गुरु वैष्णव के संग से जिनको नारद ऋषि जैसा सनत सनंदन सनत कुमार जैसे गुरु और वैष्णव मिले वो स्वर्गता इन सबको छोड़ करके और क्या करे 24 घंटा भगवान की भजन में बोला। ऐसा करने पर जब कम पूर्ण रूप से शरणागति उसको भगवान देखेंगे तो और उन्नत अधिकारी वैष्णवों को गुरु के रूप में वैष्णवों के रूप में उनके पास में भेज करके ये सबके प्रति उनका लोभ उत्पन्न कराएंगे लोग उत्पन्न कराने के मूल कारण वही है, और उसमें सहायता देकर के उस लोग को प्राप्त करने के लिए विचिकित्सित हो वो चिकित्सा करेंगे, वो सभी वही कराते हैं, और अंत में धीरे 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 उसका स्वरूप का रस जिस रूप में है, जिस रूप का सेवक है, उसके लिए योग्य बने। जो लॉ के लिए क्वालिफाइड है वो चलेगा किधर, लॉ की तरफ में पढ़ेगा ग्रेजुएशन के बाद में, जो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर की तरफ में चलेगा, जो और व्यवसाय इत्यादि करना चाहता है वो क्या करेगा, बीकम एमकम और सीए इत्यादि की तरफ में चलेगा, वहां से विभाग खुल जाते हैं अलग अलग। उसी तरह से भगवान के बहुत से डिपार्टमेंट में है, और उन डिपार्टमेंट में तरह तरह से सब गुरु वर्ग हैं, वो उन्हीं का संग देंगे, और संग दे रहा करके धीरे धीरे उस विषय में एक्सपर्ट करके किसी को शांत रस में, किसी को दासरस में, किसी को सख्त और किसी को बात्सल्य और किसी को मधुर रस के योग्य बना करके और नित्य लीला में प्रवेश कर। जैसे इन लोगों को अभी बतला रहा था, दंडकारण्य वासियों को उनको सुजोग देते 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 रामचंद्र की लीला तक ले आए। वो लोग इसके पूर्वकल्प से ही महाप्रभु जी की कथाओं को सुन करके आकृष्ट हुए होंगे, और उनका प्रसंग पाकर के उनके अंदर में लोभ उत्पन्न हुआ होगा, वो लोग विकसित होते 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 कुछ दूर तक आ गया होगा, धीरे धीरे वो भावावस्था तक दिन मंगल की स्थिति में पहुंचे होंगे, और पहुंच करके अब रामचंद्र जी के समय में आए, किंतु शिथिल गति से उनका साधन भजन चल रहा होगा। कृष्ण ने रामचंद्र जी का उनको संग दे दिया और उनके द्वारा उद्दीपित कर दी उनकी साधना को। उद्दीपन करने से ये कौन कर रहा है, वह कृष्ण ही करा रहे। उद्दीपित करके रामचंद्र जी से मांगा जे प्रभु आप हमें ऐसी कीजिए व्यवस्था जिससे हम लोग गोपी भाव से कृष्ण को पाते। रामचंद्र जी ने कहा मेरे द्वारा तो ये संभव पर नहीं, किंतु हां मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं कि अपनी जोग माया जो मेरी है उसके द्वारा तुम्हारा जन्म गोपी शरीर में करा दे, और वहां पर मैं ही कृष्ण के रूप में या मेरा जो मूल स्वरूप कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन नंदन के रूप में मैं तुम्हारी भावनाओं को वहां तक पहुंचू। इसलिए उनको जन्म दिला दिया। जन्म दिलाने के बाद में गोपीकरण में जन्म हुआ, धीरे 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 किसी किसी गोपियों का उन मूल जो गोपियां थी नित्य सिद्धा उनका संग कराया, ये भी चिकित्सा हुई, और किसी किसी को किसी किसी का विवाह हो गया दूसरे गोपों से, उनकी शादी भी हो गई, उनको बाल बच्चे भी हो गए। कभी कृष्ण में पूर्ण अनुराग है पूर्व जन्म के लिए, किंतु यही सब कसाय है, तो किसी किसी का सिद्ध संग गोपियों के साथ में संग होने से उसके लिए युक्त हो गई और उनको राजस्थली में कृष्ण के साथ में पहुंचा। बाकी जो रह गई लड़के बाल बच्चे वाली वो कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन थी, किंतु पीछे से जब उनके पत्नियों ने रोक दिया तो अत्यंत मर्माहत हुई और विरह की आग से उनका यह भाव सब जल गया, जो कुछ कसाया था कमी थी वो पूरी हो गई और कृष्ण ने उनको राजस्थली में पहुंचा। तो ये सब कृष्ण ही करते हैं। विरह से तड़फाया, विरह से तड़फाना भी आम पकाने के समान गर्मी देना है, ये विरह की आग है। इस तरह से कृष्ण अपनी सेवा के लिए साधकों को योग्य बना करके धीरे धीरे वहां बने। सब तरह के आम लगे हुए, हम लोग आम के फल हैं, कोई अभी छोटे छोटे टिकोरे टिकोरा जानता है, टिकोरा होता भोजपुरी भाषा, छोटे छोटे आम के जो फल होते हैं छोटी स्थिति सरसों के बराबर, उसको टिकोरे कहते हैं। कोई टिकोरे हैं, कोई अभी मंजरी के रूप में अभी अभी लग रहे हैं, कोई कोई कुछ बड़े हो गए हैं कुछ थोड़े से, उसमें कितने झड़ जाते हैं देखा है ना, सभी आम लग जाए तो पेड़ ही गिर जाए, इसलिए कितने सब झड़ जाते हैं, कुछ कुछ कोई वर्षा से झड़ जाते हैं, आप तूफान आम में तूफान गिर जाते हैं, कोई अधपक्के तक होने पर भी कितने आदमी तोड़ लेते हैं, वो आंधी में टूट जाते हैं, कुछ गिर बहुत कम पक जाते रह लेते हैं पकने के लिए, देखते हैं कि ये अब पक जाएंगे तो कोई दूसरा आदमी ले लेगा, इसलिए चतुर जो
माली होता है
देखते हैं कि अब पकने पकने को हो रहा है, अब पक जाएगा, तोड़ने पर भी उनको तोड़ लिया घर में रखो, एक एक पकता जाता है और खाता जाता है, ऐसे कृष्ण रूपी माली उनको जो सिद्धा जोग माया के द्वारा उनको धीरे धीरे पका करके विरह में पका करके धीरे धीरे चिकित्सा करके अपनी सेवा के, कोई कोई बिरला आदमी ही शायद ही उस स्थिति में पहुंचता है, इसलिए यहां कहते हैं सब कम त्यागिया, ऐसे नहीं होगा कि यहां कभी गल बजाएंगे उधर भी करेंगे, उससे भी गल में जाकर के मुंह लगाएंगे, उससे भी उस घाट पर भी पानी पिएंगे, उस घाट पर भी पानी पिएंगे, कर्म भी करेंगे, ज्ञानियों का भी संग करेंगे, योगियों का भी संग करेंगे, जो बुलाया उसी के पास में चलेगा, भाई हमको तो सभी बुलाते हैं, हम सबके पास में जाएंगे। कृष्ण देखें अच्छा ये सब जगह गाल भरता है, अभी ठहर 10-20 जन लगाएंगे भोगा लेंगे, और जैसे दुकान वाले डंडा लेकर के बैठते हैं नहीं के भाई, यदि किसी ने मुख लगा दिया तो क्या करते हैं, डंडा उठाया, तो ऐसे बीच बीच में चिकित्सा कराएंगे, करते करते कितने जन्म जाएंगे, एकांतिक होंगे, आगे बढ़े कैसे ही करें, हम जो लोग कर्म का त्याग करके, ज्ञान का त्याग करके, योग का त्याग करके, सब चीजों का त्याग करके, शरीर से मन से आत्मा से हमारे प्रति प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, मैं उन्हें अमृत धर्म माने भक्ति धर्म, क्योंकि यहां बतलाएं अमृतत्व भक्ति भक्ति मई भक्ति भूताना अमृत इसलिए भक्ति तो अमृत है, ये अमृत देकर के आप उसे स्नेह भी देकर के अपनी सेवा के योग्य बना देते हैं, अमा तौर पर है तब कृष्ण के साथ में रमण करने के लिए योग्य होता है। कितना बजा भाई? कहते हैं कि देखो इसके लिए बहुत कुछ प्रत्याग करने की जरूरत है, ऐसे नहीं होगा ये अवस्था, आत्मी दुर्गता है, ये साधारण अवस्था है, चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होना होगा ही, और महाप्रभु के शरणागत कैसे होना होगा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट भी कल चरित्र उनका श्रवण किया, रघुनाथ भट्ट जी हैं, भूगर्भ गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, नरोत्तम ठाकुर पीछे से विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे ही शरणागत होना होगा, न धर्म न धर्म सुतिगम निरक्तम के लिए करू प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परित्याग जानहतम सती सुन नंदीश्वर पति सुतत्ते गुरुगरम मुकुंद स्मर परम अजस् इसकी व्याख्या हम लोग कल करें, आज यही पंचात हम लोग सब चेष्टा करेंगे जो जिस स्टेज में है उसी स्टेज से उन्नत होने के लिए चेष्टा करेंगे, जब तक हम अपने मन से विषयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक महाप्रभु के प्रेम धर्म में हम प्रवेश नहीं कर, समझ में नहीं आएगा जो क्या चीज है, इसलिए इसको छोड़ करके अच्छी तरह से आत्मशरणागत होकर के इसमें प्रवेश करना है। लीजिए
तवैवास्मी तवैवास्मी न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चर।
दूसरे श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने की थी, चलो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि
सप्तम जाम अष्टम जाम भजन करने के लिए साधक को उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा। उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने मनस शिक्षा का एक श्लोक लिया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, और उसको कह रहे हैं। अतः तो ऐसे साधक होना चाहिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ में भजन कर सके, अन्यथा उसके लिए ऐसा भजन संभवपर नहीं है। अतः प्रेम प्राप्त भाव तो उसको हो ही गया है, साथ में वह अपने चित्त को ऐसे लगा दिया है कि मन के द्वारा अभिनिविष्ट रहता है और उसका नित्य सिद्ध जो परिकर है उनका अनुसरण करता हुआ भजन करता है। ऐसा होना चाहिए। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आप लोग जानते हैं, बचपन में ही जब वो किशोरावस्था में थे बचपन में ही हरिदास ठाकुर का उनका संग हुआ और उनके संग से प्रभावित होकर के बचपन में ही उन्होंने अपने पुरोहित से पहले मंत्र लिए और इसके बाद में उनके गुरु कौन थे? जदुनंदन ही तो, जदुनंदन आचार्य जी ये अद्वैताचार्य के प्रिय पात्रों में से हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, मंत्र लिया और भजन में लग गए। बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े सुंदर थे राजकुमार, और अपने पिता और ताऊ जी की संपत्ति के एकमात्र अधिकारी। उन लोगों ने देखा कि ये कुछ लड़का बिगड़ रहा है। बिगड़ना मैंने क्या, बिगड़ना उसको कहते हैं जो सिनेमा बाइस्कोप ना जाए, जो सिनेमा बाइस्कोप जाता है या जाती है, भोग ग्लास में प्रमत्त रहता है या प्रमत्त रहते हैं, बिगड़ेल हो गए हैं वो बल्कि ठीक है, किंतु बिगड़े हुए वो हैं जो एकादशी का व्रत करने लगे, लड़का या लड़की गले में माला ले ले वो बिगड़ेल हो गए। आजकल के समाज की दृष्टि, अब भगवान के नाम की माला यदि ले ले तो एकदम वो बिगड़ी या बिगड़ गए। लोगों की ऐसी आजकल धारणाएं जो वो बिगड़ चुका, चरित्र से भ्रष्ट हैं, मदिरापान करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुष्चरित्र हैं, कोई भी बात नहीं, ये सब चल जाएगा, किंतु यदि भगवत भजन करने लग गया तो वो सब प्रकार से बिगड़ गया। तो वैसे उनके पिता ने सोचा कि ये बिगड़ गया, उन्होंने सोचा आज अच्छा एक उपाय है, बड़ी सुंदरी लड़की से इसकी शादी कर दी और जितने जीवन में भोग विलास के साधन है सब इसको उपलब्ध करा दिए। उन्होंने ऐसी की विश्व विख्यात उस समय जो लड़की थी परम सुंदरी किशोरी लड़की से उसकी शादी कर दी और भोग की सामग्री पूरी भर दी, किंतु जिसका मन कृष्ण में लग गया, भजन में मन लग गया, वो ये सब चीजें उनको तनिक भी सुहाती हैं, वो बांध नहीं सकती। फिर भी महाप्रभु के पास में जाने आने की चेष्टा करने लगे। माँ वो तो पहले ही चले जाते, महाप्रभु जी ने उनको मना कर दिया, अभी मत जाओ, घर में रहो, पागलपन मत करो, तुम अभी घर में रह करके भगवान का भजन,
परिपक्व होने पर देखा जाए। महाप्रभु कहने से कुछ दिन के लिए और मैंने कहा घर में रह करके घर का व्यवहार जो है वो ठीक रखो, किंतु अपने निष्ठा ठीक रखो, घर का व्यवहार करो कुशलता के साथ में, किंतु मन को अपने भगवान के पास करो। उन्होंने ऐसा किया, किसी को मालूम नहीं होने दिया, दिन पर दिन उनकी भक्ति बढ़ने लगी और व्यवहार में भी कुशल होकर के करने लग गए, किसी को पता नहीं चला। किंतु बीच बीच में वो महाप्रभु जी के पास में जाना आना चाहते, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको सुयोग मिल गया और वो सबको छोड़ करके कोई भी वाहिता स्त्री रह गई और पूरा धन संपत्ति जो अकेले मालिक थे वो भी रह गया, सबको छोड़ करके पैदल जगन्नाथपुरी चले गए बिना खाए पिए। 15 दिन का रास्ता, कितने दिन का, 1 महीने का रास्ता पैदल 12 दिनों में तय कर लिया। 600 किलोमीटर पार करके कभी खाया सूखा कोई चीज, चूड़ा और मुड़ी लोगों ने कुछ दे दिया है, जंगलों के रास्ते से इधर उधर चलकर कोई पकड़ न सके और वहां पर चले। महाप्रभु जी पहले तो उनको मना किया, वही महाप्रभु जी कह रहे हैं आज भगवान ने कृपा करके तुमको विषय के गर्त से, गड्ढे से, विषय के गड्ढे से आप उनको निकाल करके धनबाद। फिर वहां पर जब तक महाप्रभु जी रहे, स्वरूप दामोदर रहे, उनके साथ न रहे, खाते क्या थे, खाना तो जरूर होगा ना, पहले खाते थे बाजार से मांग लेते थे, गोविंद या क्या
आनंद बाजार,
आनंद बाजार से मांग करके ठाकुर जी का प्रसाद खा लेते, किसी से कोई दे देता बिना मांगे, वहां नियम है। आप लोग भी जाएंगे ना, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको दे देगा प्रसाद बिना मांगे। हम भी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, देखा बिना मांगे ही, महात्मा जी वहां प्रसाद खाएंगे, तब हम लोग मौन रहे, तो समझा जाए मौनम सम्मति लक्षण, लेकर के बैठा दिया हम लोगों ने खा लिया। अब चक्का लग गया है वहां पर जाने पर, जब तक कि वहां का महाप्रसाद दाल और चावल नहीं मिलेगा मन ही नहीं मानता, यदि कोई नहीं देगा तो अपने आप खरीद भी लेंगे या किसी भक्त से कह देंगे कि भाई प्रसाद खाने की इच्छा हो रही है, बस बुला देगा वहां पर खा ले, तो वही मांग करके खाने लगे। कुछ दिनों के बाद में कहा कि ये उचित नहीं, सिंह दरवाजे पर रह करके कोई दे देता तो वो दे दे। फिर सोचा जी ये वेश्या का काम है प्रतीक्षा करना, मैं ये भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, सड़ा गला अन्न जो गायों से खाने से बच जाता बासी अन्न उसी को धो धा करके नमक देकर के खा कर, दिन रात शयन नहीं करते, सोते नहीं, कोई भी भोग की सामग्री उनके पास में नहीं। राजा के लड़के, उनके पिताजी ने कुछ रुपया और नौकर चाकर ब्राह्मण भी भेजा, किंतु उन्होंने कोई चीज ग्रहण नहीं किया, सब लौटा दिया। ऐसे रहकर उन्होंने भजन किया महाप्रभु जी के अप्रकट के बाद में, स्वरूप दामोदर के अप्रकट के बाद में वो चले आए वृंदावन, इसलिए आए कि मैं मरूंगा यहीं पर, भजन सजन तो होता नहीं है, और वो लोग सब चले गए, मैं भी जमुना में कूद करके अथवा गोवर्धन में जा करके पेड़ वहीं से गिर कर भृगु पाप करके मर जाऊंगा, जब भजन ही नहीं हुआ तो क्या जरूरत है ये शरीर की रक्षा कर। स्वरूप सनातन जी ने बड़े आग्रह से छोटे भाई की तरफ में उनको रखा, उनको समझाया बुझाया और उनको राधा कुंड में रखा। वहां पर आते दिन रात भजन करते, सोने धोने का तो कोई नाम नहीं, लवन जैसी चीज को भी नहीं, टेस्ट के लिए नहीं देते, हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे, सब्जी बिना नमक की कोई मिल जाए वो अच्छी नहीं, नमक का जरूर कुछ ना कुछ टेस्ट होना चाहिए, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, केवल इतना सा मट्ठा भोग छाछ इतना सा बस लेकर के जीवन निर्वाह करते, और ऐसे आविष्ट रहते थे उनको पता नहीं कि संसार कहाँ है। किसी ने एक बार बड़े दोने में उनको मत्था दिया, मैंने पूछा ये कहां से ले आया, मैं कहा कि सखी स्थली से, सखी स्थली मैंने यहां पर चरण रावली जी बात करती वहां से, अरे तुम वहां से लाया, बस उसको फेंक दिया और लटकिया उठा करके मारने दौड़े। मारने दौड़े माने होश में नहीं। चंद्रावल जी का नाम सुनते ही उनका भीतर में आवेश आ गया और सोचा कि कृष्ण को ले जाने के लिए राधा जी के यहाँ से ये सखी ठगने के लिए आई है, इसलिए उस पर क्रोधित। वो भी नहीं समझा, ऐसे भजन में आविष्ट रहते थे। उन्हीं का ये श्लोक, सप्त में यदि भजन करना है तो आज न कल न परसों ऐसी स्थिति लानी पड़ी, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ऐसा ही भावना आनी पड़ेगी इस प्रेम के लिए। साधारण भजन करने के लिए ये सब नहीं, जब तक हमारी हमारे अनर्थ हैं, जब तक निष्ठा है, रुचि है, तब तक तो ऐसे ही चल जाएगा, किंतु ऐसा प्रेम लाने के लिए ये जरूर ऐसा ही करना, अन्यथा ऐसा शुद्ध प्रेम नहीं आ सकता। तो कह रहे हैं यदि भजन करने की लालसा है तो इनका अनुसरण करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, न धर्मम ना धर्मम सुतगुण निरुक्तम कुरु करु। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में और धर्मशास्त्रों में जिसको धर्म कहा गया है और उसके पालन करने के लिए विधियां दी गई हैं और वेदों में जिन कर्मों को निषेध किया गया है, इसके करने से पाप होता है, उन अधर्मों को, ये दोनों को हमको छोड़ना है। न हमको धर्म से न अधर्म किसी से हमको जरूरत है, न पुण्य से जरूरत है न पाप से जरूरत है। तो तीसरी चीज कोई होती है पुण्य पाप के अतिरिक्त कहां होती है? तृतीया पंथा मुरारी, भगवान का भजन करना न तो पुण्य है न पाप है, इन दोनों से अलग है, अतीत है। वो भगवान का भजन करने वाला न पुण्य करता है न पाप, ये दोनों लोहे और सोने की बेड़ी के समान है, ये दोनों बंधन का कारण है, पाप और पुण्य दोनों। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति इन दोनों से दूर रहेगा। तो धर्म मैंने जैसे गोपियां हैं, गोपियां तो आदर्श हैं, इसके अतिरिक्त भी पांडवों को लीजिए, प्रहलाद महाराज जी को लीजिए, महाप्रभु के भक्तों को लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान थे किंतु बचपन से ही हरिनाम करते हैं। हरिनाम करने वाला जाति पाती से अतीत होता है, जाति पात पूछे ना कोई, हरिका भजा तो हरिका होई। वैष्णव में जाति पात देखना ये भागवत में भी निषेध किया गया है, ऐसा करने से अपराध होता है वैष्णव की जाति पाती से। किंतु हम भी अभी होना, अभी इतने हम हैं, किंतु यदि अत्यंत नीच कुल का कोई व्यक्ति हम लोगों के पास में आ जाए, हरिनाम भी करता है, तो हम उसका छुआ हुआ नहीं लेंगे, न पानी पिएंगे न कुछ करेंगे, ऐसा स्वाभाविक होता है। फिर मुसलमान कुल में जन्मने लिए व्यक्ति को इसलिए तो बात नहीं किया है। इसीलिए हमारे समाज में ऐसा नियम हो गया कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं, विशेष करके यहां वाले ब्राह्मण जो हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रसाद वहां जाकर के तो पाले, किंतु यहाँ पर ठाकुर जी को भोग दिया हुआ कच्चा जो कहते हैं, वो कोई चीज चावल दाल तरकारी नहीं लेंगे, किंतु यात्रा करना अपराध है। किंतु फिर भी ब्राह्मण होने पर भी सन्यासी है, होटल में खा लेंगे कोई बात नहीं, जानते हैं कि ये ब्राह्मण है, वो जानते हैं कि हम सन्यासी हैं, ब्राह्मण भी उच्च कोटि के ब्राह्मण है, सन्यासी भी है, आचरण हमारा सब ठीक है, गंदी चीजें कुछ भी नहीं लेते हम लोग, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं लेते, तभी यहां के ब्राह्मण हमारा हाथ का बना हुआ कच्ची रोटी नहीं लेते। किंतु
स्वप्न में ले लेंगे उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ समाज हमारा बन चुका है जो ऐसा करता है। तो जगन्नाथपुरी में भी वहां ठाकुर जी का प्रसाद तो वहां पर तो ले लेंगे किसी कारण से, किंतु उसमें भी ही सीखेंगे लोग। तो कहते हैं वो हरिदास ठाकुर जी मुसलमान जाति के थे, किंतु वैष्णव उनको जाति का वैष्णव मुसलमान नहीं मानते। वो भगवान जैसे उनको भी शुक्र सत्व का मानते हैं, उनको मुसलमान मानना भी दोष है। तो समाज तो उनको मुसलमान ही मानता था। तो एक समय में अद्वैताचार्य पक्के ब्राह्मण हैं और वैदिक ब्राह्मण हैं, मंत्र तंत्र शास्त्र विशारद हैं, ब्राह्मणों के मुकुट हैं। उनके घर में वार्षिक श्राद्ध का दिन था, पितृश्राद्ध, वही पितृपक्ष वाला वो श्राद्ध है। तुम बंगाल में ऐसा नियम है कि पितृश्राद्ध का पहला जो भोग है, पहली थाली, वो दी जाए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, उच्च व्यक्ति को, विद्वान हो, धार्मिक हो, सब प्रकार से योग्य हो, पूज्य हो। हरिदास ठाकुर ने देखा जैसे हजारों आदमी, उनके संबंधी कुटुंबी ब्राह्मण लोग सब आए हैं, बड़े बड़े पूज्य लोग आए हैं। उन्होंने सोचा इसमें सबसे श्रेष्ठ योग्य कौन है, जिसको सबसे ऊंचा आसन वाला और पहला भोग जो है उसको दिया जाए। वहां पर देखा, अब तो देख करके घर से बाहर चले गए। हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने निमंत्रण कर दिया। हरिदास ठाकुर ने सोचा था जब सब ब्राह्मण लोग पालेंगे महाप्रसाद के रूप में, ये उच्छिष्ट के रूप में जो कुछ दे देंगे मैं पालूंगा। इसलिए घर के बाहर में बहुत दूर वो खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि ब्रह्म भोज हो जाए और सब कुछ ठीक ठुक हो जाए, तब मैं पाऊंगा। इसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे और हरि नाम करके उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जोर जबरदस्ती उनको उसी आसन पर बैठ। अब आसन पर बैठते ही चार तरफ में परस्पर खाना खुशी और तो हल्ला मचने लग गया। ये देखो तो आज ध्वस्त कर दिया हमको, यहाँ पर समाज में ला करके सबसे ऊंचा सम्मान एक मुसलमान को दे दिया जो कि गाय भैंस खाते हैं। आज तक खूब कोलाहल होने लगा। उन्होंने कहा जैसे देखिए आप द्वैताचार्य, आपके घर में हम लोग आए हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। एक मुसलमान को बैठा करके और हमारे सामने पहला उसको पूज्य वाला आसन आप ले रहे हैं और भोग ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं खोजेंगे। वो देखने लगे थे चुपचाप रहे, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने वो भोग की थाला उन्हीं के सामने में समर्पित किया। अब ये तो है करने लगे हरिदास ठाकुर जी, किंतु ये मान नहीं रहे। और उधर में ब्राह्मणों का समाज बोला कि हम लोग तब अब नहीं खाएंगे, हम लोग अब पूछ रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, आप लोग आराम से खुशी के साथ में आप लोग पधार सकते हैं, आप लोग चाहिए, आप लोगों की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे समाज की जरूरत नहीं है जो भगवन भगवन नहीं करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यदि शुक्रकुल में भी जन्मा कोई व्यक्ति हो, चंडालकुल में भी, और वो भजन करता है तो तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स्वतो पूज्यो अर्चितः। हमारे समान भगवान कहते हैं, हमारे समान पूजा है, पूज्य है, उसी को दो और उसी का ग्रहण करो, उसको साधारण मुसलमान या शुक्रकुल का मत समझो। इसलिए मैंने जो किया है वो ठीक किया है, शास्त्र सम्मत किया है। आप लोग वेद शास्त्र उपनिषद सब नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। सब लोग चले गए उस समय। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने बाहर में जाकर के विचार किया, ये बड़े वैदिक ब्राह्मण जो कुछ करते हैं शास्त्र सम्मत करते हैं, हम लोग इनकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ करके फिर सब लोग एकत्रित होकर के आकर के इनके चरणों में क्षमा मांग करके फिर बड़ी प्रसाद दे। ये कहते हैं न धर्म, हमें उस धर्म से कोई प्रयोजन नहीं जिसमें भगवान की भक्ति का कोई भी चीज नहीं हो। उस समाज से हमको लेकर के कुछ नहीं करना है। एक समय की बात है, हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हमारे परम गुरुदेव, जब वो प्रचार कर रहे थे तो बड़े बड़े लोग आकर्षित होकर के, छोटे कुल के, बड़े कुल के, सभी लोग आकर्षित होकर के आए।
हमारे यहाँ पर एक मुनि महाराज जी थे, हमारे गुरु जी ने उनको संन्यास दिया।
ये सब एक गुरु
स्वामी महाराज जी के साथ एक दिन में संन्यास, तो ये पहले गृहस्थ थे किंतु प्रभुपाद के प्रति समर्पित थे, वैष्णव थे, पढ़े लिखे तो खूब नहीं थे किंतु इनका व्यक्तित्व तो बड़ा गंभीर था और जो कुछ काटे थे उसको पालन करते थे। तो उनकी एक लड़की थी, उन्होंने लड़की की शादी तय की थी और कल ही बारात आने वाली थी, अब कल आएगी। लोगों ने उस विवाह को काट दिया, काट दिया। ये अरे ये अब तंबाकू नहीं खाता पीता है, हुक्का नहीं, समाज का हुक्का नहीं पीता और बीड़ी नहीं पीता है और एक आपसी व्रत करता है। ये हमारे समाज की चाल चलन आचार विचार से छोड़ दिया और किसी को बुलाता नहीं है अपने घर में, खिलाता नहीं है और प्याज लहसुन ये सब परोसता नहीं है, तो ये हम लोगों का ये अपमान है। ले जाकर के उसे कहा देखो उस घर में अपनी लड़की की शादी मत करना, हम गांव वालों ने मिल करके उसको छंटाई कर दिया है, बाइक और कर दिया है, इसलिए उसके घर में हमारा ब्राह्मण धार्मिक कार्य करने के लिए नहीं जाएगा, हमारा नाई उसके घर में काम करने नहीं जाएगा, हमारा ये पानी भरने वाले वहां पर नहीं जाएंगे और हम लोग कोई भी उसके घर में खाने या पैर धोने के लिए, पैर की धूली देने के लिए नहीं जाएंगे। अरे भाई ये समाज नहीं समझते, उसका विरोधी हो गया और ऊपर से उसने क्या किया है, जब ये पवित्र उसको नहीं लेना चाहिए, जब ये पवित्र उसने धारण कर लिया, ये ब्राह्मण का ब्राह्मण बनता है। अच्छा ठीक है, बाइकॉट कर दिया। इन्होंने कहा जैसा अच्छा ठीक है, अरे आज ही का शायद कुछ दिन का पहले का समय जबकि आम पके हुए होते थे, वो बड़ा सुंदर सुंदर आम पका हुआ था, कटहल पके हुए थे और अच्छे ठीक कलकत्ते से उन्होंने रसगुल्ला चमचम ये सब चीजें लाई, अच्छी अच्छी दही मीठी दही, यहां पर खट्टी दही होती है, लाल लाल बंगाल की दही मुख से लाख तक पकने जाए और छेने की तरकारी सब्जी की सब व्यवस्था की, सब्जी इत्यादि सब लाया, घी प्याज सब तैयार था और पूरी बनने की तैयारी थी। जो वो लोग आएंगे दूसरे दिन विवाह था सवेरे, उन्होंने खबर दिया वो विवाह करने के लिए आए नहीं, खबर कुछ भी नहीं दिया विवाह करने के लिए आए नहीं और सारा गांव बाइकआउट कर दिया, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। तो ये बोले जैसे अच्छी बात, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज लड़की की शादी में इतने रुपए खर्च होते ये सब चीजें जाती, आज वैष्णव लोग बड़े आनंद के साथ में इसको पाएंगे, बस सबको गाड़ी में भर करके और कलकत्ते मिलेंगे जहां पर प्रभुपाद जी थे, किसी को बतलाया नहीं, उनको देख करके जितने ब्रह्मचारी थे सब नाचने लग गए। आज हमारे सनातन प्रभु दिया है, जरूर कुछ ले आए होंगे हम लोगों के खाने के लिए। जब वो मठ में जाते थे ब्रह्मचारी कहते थे प्रभु हमारा गमछा नहीं है, हमारा कपड़ा, एक छतरी चाहिए मुझे, एक कुछ चाहिए, उनसे ऐसा जैसे पिता से करते हैं ऐसे उनसे मांगते थे। आज गाड़ी में देखा जो भरा हुआ आम और ये सब चीजें आई हैं, बड़े आए तो प्रभु जी बहुत रुपए खर्च करके ये सब चीजें लाए हैं और उन्होंने आदेश दिया कि सब ब्रह्मचारियों को ठाकुर जी का भोग लगाया जाए और लगा करके सबको बांट दिया। उधर में तो बांटने लगे सब लोग और उनके जो परम प्रिय उनके जो शिक्षा गुरु थे कौन महाराज, नेमी महाराज, बड़े विद्वान आदमी थे, संस्कृत के और सब बड़े प्रतिष्ठित, वो जाकर के प्रभुपाद से बोलिए प्रभुपाद आज सनातन प्रभु बड़े दुख से यहां आया है, क्यों आज तो देखा कि ब्रह्मचारी लोग बड़े आराम के साथ में ये सब खा रहे हैं, तो प्रभु उसकी लड़की की शादी थी और लड़के वाले ने इनकार कर दिया तो वो सब कुछ लेकर के ठाकुर जी के भोग के लिए ले आए और सबको ठाकुर जी का भोग लगा करके सबको बांटा जा रहा है। बर्तन आज उसकी लड़की की शादी नहीं होने से कितना दुखी हो सकता है आप बतलाइए। बड़े दुखी हो गए प्रभुपाद जी, आंखें लाल हो गई। मैंने कहा कि ऐसा समाज हंस हो और बोले कि मैं कल यदि इसकी शादी नहीं हुई लड़की की, तो मैं मर करके कोई वर बन करके और आकर के कल ही इससे शादी करूंगा। बस दूसरे दिन अपने आप घर में वो चले गए और दूसरे दिन अपने आप एक बड़ा योग्य लड़का, शिक्षित ग्रेजुएट कोई लड़का और बड़े धनी परिवार का, कहते प्रभु जी हमने सुना है कि आपकी लड़की की शादी मंद हो गई, आप अपने की लड़की की शादी हमसे करेंगे? बोलिए भाई तुम तो इतने बड़े उच्च कुल का तो मैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, तुम इतना योग्य है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, सुकांत है, काम करने वाला है, धन तुम्हारे पास में है, मैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे माता पिता यदि इसके लिए राजी हों तो मैं कर सकता हूं। उन्हें कहीं माता पिता से हमको कुछ नहीं पूछना है, हम तो अभी आए हैं और अभी आप को बिना पैसे की, बिना किसी चीज की, ऐसे ही आप उसका कर ग्रहण हमारे हाथ में दे दी, बस अब लड़की लेकर के चले गए। बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय में साथ ही साथ उसकी शादी उसको विधिवत, ऐसे कोई मंत्र धर्म तो कोई ब्राह्मण तो आए नहीं, अपने आप तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा, तुम मेरी, मेरे स्वामी हो, बस माला बदल करके और उनको शादी कर। एक दिन की देरी हुई और उसकी शादी हो गई। यहां पर देखो कैसी निष्ठा उनकी है, पर धर्म कर्म और ये समाज समाज का हम लोग कुछ नहीं भी जानते हैं, भगवान तो है ना, आखिर भगवान है ही नहीं, इसलिए दुखी होने की क्या जरूरत है? यदि शादी नहीं हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान की अद्भुत कृपा है, यदि शादी हो गई तो बहुत अच्छा, ठीक है, प्रभु की इच्छा है। किसी भी और समय हमको भगवान का भजन करना है और जिनको निरपेक्ष रूप में भजन करना है उनको तो धर्म और धर्म इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, भगवान का भजन करना ही धर्म है, भगवान का भजन नहीं करना ही अधर्म है। इसलिए जगत में जो धर्म जितने भी हैं, सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम, सर्व अधर्मान प्रत्यजमान एकम, सब धर्म अधर्म को सुन सुन करके भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या निहतनु, सबको छोड़ करके किसका भजन करेंगे? अधिकांश लोगों को यह ठीक ही नहीं है किसका भजन किस रूप में हम करें, न तो शंकर को छोड़ सकते हैं, न हनुमान जी को छोड़, न नारायण जी को छोड़ सकते हैं, न दुर्गा मैया को छोड़ सकते हैं, न राधा कृष्ण को ही नहीं, बागल को, बाल गोपाल। कल एक संसद सदस्य उमा भारती जी हमारे पास में आए, बातों बात में कुछ बात हो गई तो मैंने पूछा कि भगवान के प्रति आपकी क्या भावना है। देखा जो उन्होंने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को ले आई थी, इतनी बड़ी होती, बड़ी सुंदर, और ले करके हमको दिया, हमने उसको लिया, सिर पर भी रखा, इधर में रख करके फिर उनको, क्या भावना आपकी है? उन्होंने कहा कि ये मेरे भैया हैं, दो चार मिनट का समय था, हमने कहा कि देखिए आप तो अमेरिका जा रही हैं और गीता पर सीरीज लेक्चर उनके थे हैं, कोई हिंदुओं का विराट सम्मेलन वहां हो रहा है उसमें जा रही हैं, ये दो महीने के और लेक्चर दे हाथ पर से चुन करके जा रहे हैं। हमने कहा शास्त्र सम्मत हमारे जो विचार उनको ग्रहण करके कहीं जाकर के पश्चात देश में कुछ देंगे, बिना समझे बुझे कुछ मत दें। उन्होंने तो ये दिया था ना, शून्य से सभी कुछ आया है, एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग विल बी मेड इन जीरो, सो एवरीथिंग इज जीरो, नथिंग साइफर, एवरीथिंग इज साइफर, सब कुछ साइफर है। हमने कहा ये भारत की रीति नीति नहीं, ये विधर्मी बौद्धों के ये विचार, उनको भजन में सिद्धि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने खीज करके कहा कि भगवान का ध्यान किया, भगवान आए नहीं, उनका अनाथग्रस्त हृदय में, इसलिए कहा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, उनका रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है। किंतु गीता में कृष्ण एक पर्सनैलिटी है, कृष्ण एक व्यक्तित्व है, एक कृष्ण पर्सन है, और वह कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम, और इसको हमारे भारतीय मनुष्यों ने कहा गीता का जहां समस्त उपदेश समाप्त हो जाता है वहां से भागवत, क्यों इसमें प्रेम का संदेश, केवल मर्यादा ही नहीं है, श्रीमद् भागवत में कुछ हद तक मर्यादा की शिक्षा दी गई, आत्मतत्व का बोध कराया गया कि हम जड़ नहीं है, चेतन है और वही आनंदमय है, किंतु इसके बाद में और कुछ नहीं दिया गया। उसमें भगवान के प्रति हमारा जो रिलेशन क्या है ये न देकर के साधारण रूप में ये कहा गया कि भगवान हमारे पूज्य हैं, हम उनके पूज्य हैं, वो आराध्य हैं, हम उनके आराधक, बस इतना ही तक, इसलिए सब धर्मों को छोड़ करके भगवान का, किंतु इसके बाद में नहीं दिया। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में मास्टर होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, सब प्रोफेसर क्या एक ही जैसे होते हैं न, उनका विभाग कुछ अलग अलग होता है, ने? कोई साइंस पढ़ाते हैं, कोई फिलॉसफी पढ़ाते हैं, कोई साहित्य पढ़ाते हैं, साहित्य में भी कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत, कुछ हिंदी, कुछ कोई बंगला, अपने अपने विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होते हैं, सब एक नहीं है, जितने बच्चे हैं सभी एक ही क्लास में नहीं होते, अलग अलग उनका रखता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो भक्ति है या भावना है एक प्रकार की नहीं होती है, पांच प्रकार की बतलाई है। इन पांचों प्रकार में भागवत में भगवान के प्रति गोपियों के भाव को सर्वोत्तम बतलाया है, यही विशुद्ध प्रेम। यदि आप इसको थोड़ा सा अनुभव करें और इसकी झलक या एक कण भी विश्व के लोगों को दे सकें तो ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज प्रेम होगी। आप इसको उपलब्ध करें, कर सकें या इसको अनुभव कर सकें और जगत को दे सकें भगवत का कोई संदेश, तो यह संदेश अमूल्य होगा। इनको समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। इसी को ये करें ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामृतम, ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करेंगे, राधा केव कृष्ण की उपासना सखा लोग करेंगे, है ना, दास लोग भी कृष्ण की केवल उपासना करेंगे, माता यशोदा भी, पिता नंद बाबा भी अकेले कृष्ण की उपासना करेंगे बाल गोपाल की, किंतु जहां राधा कृष्ण दोनों होंगे उसमें कोई भी पुरुष देश में वहां पर नहीं जा सकता, उसके लिए उनकी उपासना कैसे होगी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी करते थे, जैसे महाप्रभु जी करते हैं, इसलिए उसमें साधारण आदमी नहीं जा सकता, उसके लिए गोपियों का भाव चाहिए, बिना हुए कृष्ण की परिचर्या को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए गोपियों का भाव, गोपियों की सेवा परिचर्या के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पर इंगित दे रहे हैं, और विशेष करके इसलिए इंगित दे रहे हैं, सची सुनुम नंदी दर्पति सुतक के गुरुवरम, सची सुनुम चैतन्य महाप्रभु को तुम कृष्ण समझो, कौन नंदी नंदेश्वर पति सुतक के, नंदीश्वर के पति नंद बाबा उनके पुत्र हैं नंदनंदन कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु वही नंदनंदन कृष्ण है, और ये राधिका जी के भाव और कांति को लेकर के जगत में राधा कृष्ण की परिचर्या की शिक्षा देने के लिए आए और स्वयं राधा भाव का साधन करने के लिए आए, इसलिए यदि गुरुवरम इधर भी लगा दो तो कोई हर्ज नहीं, गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में इस चीज की शिक्षा देने के लिए आए, इसलिए चैतन्य शिक्षा शिक्षा तक में उन्होंने इन चीजों की शिक्षा, इसलिए उनको गुरु वर्गपेट के भी रूप में लिया, जगत गुरु के रूप में भी दे सकते। किंतु यहां पर गुरु ब्रह्म मैंने अपने गुरु जी को मुकुंद प्रेम स्मर, मुकुंद के परम प्रिय प्रेष्ठ के रूप में स्मरण। राधा कृष्ण की सेवा जो करने वाले हैं वो है गुरु। तो यहां पर गुरु जी को मुकुंद प्रेष्ठ तत्व, मैंने राधा और मुकुंद दोनों के प्रेष्ठ तत्व के रूप में इस रूप में लेना पड़ेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने इस शरीर से रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के अनुगत, और इधर में अपनी मंजरी स्वरूप से राधा जी के अनुगत, उसी रूप में अपने गुरु जी को जैसे स्वरूप दामोदर को वो अपने गुरु वो स्वरूप दामोदर बार बार उनको किस रूप में लेते हैं, ललिता सखी के रूप में, और ऊपर से लेते हैं महाप्रभु जी के परिकर के रूप में स्वरूप दामोदर के। इसी प्रकार से अपने गुरु को मुकुंद गुरु परम मुकुंद प्रेस्थत्व स्मर परम अध्यक्ष अनुमान हे मन, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी को कृष्ण के रूप में या राधा कृष्ण के रूप में और अपने गुरु जी को मुकुंद का अत्यंत प्रियतम, जैसे गुरु जी के मंत्र में ही बतलाया कृष्ण आनंदाय, कृष्ण को आनंद देने के लिए और कृष्णा को आनंद देने दोनों के लिए, कृष्णा मैंने राधिका जी को, इसी रूप में गुरु जी का स्मरण कर। धर्म अधर्म जितने हैं सबको जलांजलि देकर के हमारी गुरु परंपरा से जिस पथ पर आचरण करते हुए चले आ रहे हैं उसी पथ से हम लोगों को भी भजन में अग्रसर होना चाहिए। अब धन्य भाव के लिए कह रहे हैं आशा बंधा जागृति भजने उक्ति, जिनके अंदर में प्रेम उत्पन्न हुआ है, जागृति है, भाव उत्पन्न हुआ है, उनको आशा है आज न कल कृष्ण जरूर मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है उनको, कोई संदेह नहीं कि कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं, जरूर मिलेंगे ही। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा न प्रेमा श्रवणात भी भक्ति अपिवा जोगे अथवा वैष्णव ज्ञानात बा शुभ कर्म वाक्य दहो सज्जात अपि अस्ति बा विनाथ साधके त्वयि तथाप्य छिद्य मूलात सती हे गोपीजन वल्लभ प्रथयते हा हा मदा शैव काम। बतला रहे हैं कितना बेटा अब आप ये इसका अनुवाद करके से बतला रहे हैं, श्रवण आदि भक्ति प्रेम भक्ति योग ही ज्ञान योग कर्म ही सज्जाति ही कंगाल नाथ तुम्हें राधा प्राण धन तुम पदे दृढ़ आशय आशाय व्याकुलित मन। यदि श्रवण भक्ति और प्रेम भक्ति इत्यादि से विहीन कोई योग हो वो आदरणीय नहीं है। जो वही आदरणीय है जिसमें श्रवण आदि भक्ति प्रेममयी भक्ति हो। यदि ज्ञान नहीं भी हो कर्म भी नहीं है, यदि उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ तभी कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, क्यों कृष्ण कंगालों के नाथ है, हे प्रभु आप कंगालों के नाथ हैं। यदि ऐसी प्रेममयी भक्ति रहती है, श्रवण आदि शुद्ध भक्ति रहती है, तो भले ही ज्ञान कर्म और सब चीजें नर हैं, कोई भी हानि नहीं है, कृष्ण को एकमात्र कंगालों के नाथ है। कंगाल माने कौन, यहां पर दरिद्र से मत समझो,
अकिंचन निष्किंचन ऐसे भक्तों से जो कृष्ण ही जिनके एकमात्र धन है, कृष्ण भक्ति जिनका एकमात्र धन है और अपना कहा जाने वाला कोई धन नहीं है, ऐसे भक्तों के ये कृष्ण सर्वस्व है। राधा प्राण तुम अपदे दीन असहाय व्यक्ति, ऐसा भक्त केवल मात्र राधा कृष्ण चरणों में एकांतिक भक्ति और एक प्रेम मात्र की प्रार्थना करता है और कुछ नहीं चाहता है। इसी तरह से इन्होंने दृढ़ता से भक्ति की तरफ में अग्रसर होने के लिए हम लोगों को इसमें बताया आज यही तक है। पंचाकल्प
सदभक्ता प्रजन समेतमे दैपायनो विरह का करेति सन्मयतया सर्वो सवैवास्मि नदीमान सयादिन इति विज्ञाय राधे तन्मे माम यं प्रभजन्तमन्ते तमपे सतेत्यं वैपान्यनो विरक्तार्यादि पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेतु सर्वभूतहृदयम् सवैवास्मि सवैवास्मि नदीमान सयादिन प्रेम भजन संभो कृष्ण भजन में निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए मनुष्य शिक्षा का दूसरा श्लोक उन्होंने पहले बताया न धर्मं न धर्मं। उनसे जो भजन करने वाला है अधिकांश लोग जो भजन करते हैं वो शुद्ध रूप से नहीं कर पाते, जो लोग धर्म अधर्म कुछ भी नहीं करते, भगवान के नाम में इतना उनको विश्वास है और भगवत भक्ति में उनको इतना विश्वास है, विशेष करके राधा कृष्ण कि और कोई चीज करने की कोई कामना ही नहीं रह जाती। एक आदमी हरिनाम कर रहा है, गुरु जी का पदाश्रय किया है, मंत्र दीक्षा सब हो गई, बहुत दिनों से प्रवचन में भी पाठ में भी आ रहा है या आ रहा है। मान लें कि किसी कारण से उसके घर में कोई विपत्ति आए तो वो क्या करेगा? वो कहा ये हमारे घर में ये जो विपत्ति आ रही है इसके लिए हमको कोई अनुष्ठान कराना चाहिए, या तो ऊपर की हवा है भूतपिशाच है, या तो कोई और गड़बड़ी है, इसलिए हमको अनुष्ठान करके उसका प्रायश्चित करना है। तो ऐसा कुछ मंत्र और दिया जाए या ऐसा कोई अनुष्ठान करें जिससे कि हमारी ये जो विपत्ति आ रही है ये, तो उसको हरिनाम में श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? आदमी इस चीज को भजन करने वाले जो है साधारण लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो जितना भी समझाया जाए वो नहीं उसे समझ, उनको एक मंत्र दिया गया गोपाल मंत्र कृष्ण नाम ये सब कहते और क्या है, इतना तो मैंने कर लिया, इसे तो देखते हैं कि कुछ नहीं होगा, और कुछ दीजिए, और क्या बाकी रह गया जो मैं उसको कर लूं तो जल्दी से हो जाए। किंतु ये लोग नहीं समझते, इसी एक मंत्र को सुल्तियों ने या उपनिषदों ने, बड़े बड़े महात्मा ने, ब्रह्मा जी ने, भोग कुमार ने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इसको किया, तब उनको साधन हुआ। और गुरु जी से नहीं पूछा कि गुरु जी और इसके अतिरिक्त जो बाकी है वो भी दे दीजिए, और क्या बाकी रह गया। तो वो कहेंगे इससे चल जाओ, ये कृष्ण नाम में कुछ गड़बड़ी है, नृसिंह मंत्र पढ़ लो तो इससे तुम्हारा पूजा हो जाएगा, ये विपत्ति। अच्छा उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तुम जाओ नारायण कवच, ऐसे ही ऐसे रूपा कई विश्वास नहीं रहा। भक्त लोग अपनी विपत्तियों के लिए कुछ भी निराकरण नहीं करते, वो आए और जाए, न धर्मं न धर्मं, हमको धर्म और अधर्म से कोई जरूरत नहीं है, हम तो राधा कृष्ण का भजन करेंगे। राधा कृष्ण का भजन कैसे होता है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का मंत्र, उनका स्मरण, उनका पूजन अर्चन वंदन, उनके धामों में जाना, यही सब। तो इससे अतिरिक्त हम धर्म न जानते हैं, अधर्म जानते हैं, जो कुछ भी होना हो जाए, तब तो ये ठीक है। इसलिए न धर्म न धर्म पहले बतला करके निष्ठा लगाया जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ में मत जाओ, एकांतिक रूप से राधा कृष्ण का भजन करो। विपत्ति को दूर करने के लिए हरिनाम के अतिरिक्त दूसरा कुछ हमको नहीं करना है, चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हरिनाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है, ना हरिकथा या भगवत भजन करो, कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ होता है पुनः होता रहे। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके नाम में ऐसी शक्ति आएगी जो अपने आप सब विपत्ति विपत्ति जो कुछ है। इसलिए इस भजन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, तब तो वो सप्तम अष्टम सोपान में वो भक्ति जाती है, नहीं तो नहीं जाएगी, वो पहले ही सोपान में रह जाएगी कि वो उससे भी नीचे चली जाएगी। हम तो राधा कृष्ण का ब्रज में भजन करेंगे, हम और कुछ भी धर्म अधर्म नहीं जानते, न धर्म करेंगे न अधर्म करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को नंदी सुत पति सुतक से उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में हम जानेंगे, और मुकुंद पृष्ठ गुरु जी को मुकुंद पृष्ठ मुकुंद के अत्यंत प्रिय इस रूप में जान करके गुरु के चरणों में सेवा करते हुए उनकी परिचर्या करते हुए राधा कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का मैं भजन करके और मैं कुछ भी नहीं, ऐसी निष्ठा के साथ में तब तो यह सप्तम सोपान में आएगा। अब इसके लिए कहते हैं कि भाई देखो, आशा बंद होनी चाहिए, आशा बंध सैन्य के साथ में आशा बंध, आशा बंध निर्बंध है ना, निर्बंध किसको कहते हैं, करिया निर्बंध वो श्लोक क्या है, नहीं प्रभु कहे कहिला एक महामंत्र यहां जो सब दिया ज्ञान, निर्बंध मैंने क्या संख्या रख करके इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं निर्बंध है ना, निर्बंध को जोड़ दो आशा बंध, ये आशा बंध मैंने क्या है, जरूर मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, हम जो भजन कर रहे हैं उससे मिल जाएंगे, वो बड़े दयालु हैं, इसलिए देखेंगे कि ये ऐसा कर रहा है तो अपने आप को मिल जाएंगे। ये आशा हम भजन करके उनको पालेंगे, इस आशा से जरूर हम पा करके ही रहेंगे, ऐसा नहीं। वो बड़े दयालु मनुष्य हैं, सर्वत्र उनकी करुणा की वर्षा हो रही, उसकी यदि एक भी छींक किसी प्रकार से हमारे ऊपर में लग गई, जरूर हमारे उनकी इसकी आशा, उस करुणा को पाने के लिए उनकी करुणा गिर रही है, आ रही है, हम जरूर उस करुणा को प्राप्त करें। ये नहीं तो साधन भजन से उनको हम पा जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, ये आशा बन रही। उसी का उदाहरण देकर के यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कह रहे हैं, न प्रेमा श्रवण आदि भक्ति रवि वा गुरु हो अथवा वैष्णव हो ज्ञानात वा शुभ कर्म वो सज्जा की अपि अस्ति वा हीनास्था अधिक साधे त्वयि तथाप्य छिद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदविश मदा सैव न। कहते हैं न प्रेमा, मुझे प्रेम नहीं है, हे गोपीजन वल्लभ मुझे आपके चरणों में प्रेम नहीं है। और प्रेम की तो, प्रेम तो सिद्ध है, उस सिद्ध की तो बात कहे, प्रेम की तो वो तो प्रेम तो बहुत दूर की बात रहे। श्रवण आदि भक्ति रवि, श्रवण आदि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्षेदनम, ये जो नौ प्रकार की भक्ति है अथवा 64 प्रकार की भक्ति है, इसमें से कोई भी साधन भक्ति हमारे अंदर में नहीं है। हम लोगों को अभी प्रतीत नहीं होगा, जब मध्यम अधिकारी में हम पहुंचेंगे, जब विचार करेंगे, एक आदमी कुआं खोद रहा है, आजकल तो वो लगा देते हैं ना हैंडपंप, पहले कुआं खोदता, कुआं खोदते चले जले जा रहे हैं। कुआं खोदना ही संतोष की बात तो नहीं है ना, संतोष की बात क्या है, पानी के लिए कुआं खोद रहे हैं, पानी मिला नहीं खोदते चले जा रहे हैं, तो क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। यदि खोदते 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 पानी यदि मिल जाए तो हम जिस काम के लिए कुआं खोद रहे थे तो पानी मिलना चाहिए, पानी ना मिले, साधन कर रहे हैं, साधन सहस्त्र 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 साधन कर रहे हैं, किंतु कहीं की भी कोई लक्षण नहीं दिखा जा रहा है जो हम साधन कर रहे हैं। का जो फल है उसका थोड़ा सा भी कुछ न तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है, न कि चित्त प्रसन्न हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जयात्मा संप्रसिद्ध अति, जिसके करने से आत्मा प्रसन्न होती है, तात्पर्य क्या है, आत्मा को प्रसन्न होगी, भगवान के प्रसन्न होने से ही तो आत्मा प्रसन्न होगी ना, अपने आप हो जाएगी। इसलिए भगवान के प्रसन्न होने से भक्ति करते हैं भगवान की, इसलिए भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान के प्रसन्न होने से भी अपने आप प्रसन्नता है। तो जिसके साधन से प्रसन्नता नहीं है, चित्त व्याकुल हो रहा है, अशांति हो रही है, तो फिर संसारिक वस्तुओं की लालसा हो रही है, तो कैसे होगी साधन, ये तो साधन नहीं। इसे जब हम विचार करके देखते हैं, शास्त्र में कहा गया है, प्रभु नमा भाष सदाई नमापराध, ये सब जानेंगे भाई कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हरे कृष्ण। अब विचार करो, ये जो नाम हमारा हुआ, ये कौन कोटि नाम हुआ, ना नमाभास हुआ, ना नमापराध हुआ, क्या हुआ, जब विचार करके देखेंगे, जो नाम का जो लक्षण है, एक कृष्ण नाम करने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं और प्रेमा भक्ति उसको हो जाती है, ये नहीं हो रहा है, इसलिए शुद्ध नाम को है। नमाभास में मुक्ति मिल जाती है, यदि हम आज तक इतने दिन 10 वर्ष तक 5 वर्ष तक नमाभास कर रहे हैं, तो ये मुक्ति होती रहती, तब तक मुक्ति तो कुछ हो नहीं रही है, दुख भी नहीं दूर हो रहे हैं। वो मुक्ति की तो बात करो, तब तो वो जो मुक्ति रहती है सामित्य इत्यादि तो बहुत मुक्ति है, ये भी नहीं। तब हम देखेंगे क्या, ये भी नाम है, नाम लेने से चित्त में आनंद होगा, रुचि उसमें होगी, चित्त गदगद हो जाएगा, तो ये तो होता नहीं। तब ये क्या है, तो नमाभास भी नहीं, तो फिर क्या है, तब तो नमापराधी रह गया, तो नमापराध हो। इसको दूर करने के लिए चेष्टा, जब हृदय गदगद होने लगे, द्रवित होने लगे, पुलक होने लगे, खूब आनंद होने लग गए, तब समझो जैसे ये नाम अब नमाभास कुछ कुछ अब चलता है। तो इसको विचार करना कि हमारा नाम कौन सा कोटि है, हम अभी जोर से मन लगा करके जोर से कर रहे हैं ना अपने आप को रख, नित खुले को देखो। जैसे उस समय क्या होता, उस समय नाम अपने आप हरे कृष्ण चल रहा है कि नहीं, देखो यदि हो रहा है तो समझो। काम करते हैं तो उसका स्वप्न देखते हैं, अच्छा तो ये जो नाम कर रहा है या उनका जो श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहा है तो तुम उनको स्वप्न में कुछ देखता है कि नहीं, संत में उसमें तो अंत संत बातें आती। तब ये सबके लक्षण ही, इसलिए इन लक्षणों को विचार करके देखना चाहिए। न प्रेमा, इसलिए प्रेम नहीं है। अब रह गया साधन भक्ति, साधन भक्ति भी, साधन भक्ति किस लिए, साधन भक्ति भाव को उत्पन्न करने वाली होती है, तो हमारा साधन जो भी कर रहे हैं ये भाव को उत्पन्न करेगा कि नहीं, या कर रहा है कि नहीं। पहले वो अनर्थ को दूर करके निष्ठा लाए, निष्ठा से रुचि आए, अपने आप करने की इच्छा हो, तब तो समझो जैसे ये हो रहा है। इसलिए स्वर्ण आदि भक्ति भी हमारे अंदर में नहीं है जैसा होना चाहिए। अभी वाजोग अथवा जोगो, योग माने यहां पर अष्टांग योग इत्यादि में साधारण और विशेष अर्थ होगा वैष्णवो जोगो, जोगो वैष्णव, वैष्णव का योग नहीं, अथवा वैष्णव का योग माने वैष्णव लोग जो भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं अष्टकाली लीला, वो लीला नहीं, तो अंततः तो भगवान का नाम एकदम प्रति के साथ में जो युक्त होकर के करते हैं, अनन्य मन से करते हैं, ये वैष्णवों का योग है, अर्थ भगवान का स्मरण जो करते हैं। तो ये है कि नहीं, ये भी नहीं। ज्ञान अथवा ज्ञान कहते हैं निर्विशेष ज्ञान का, वो भी चित्त शुद्ध हो जाता, वो भी नहीं। और वैष्णवी पक्ष में होगा ज्ञान आत्मा भगवत तत्व ज्ञान भी नहीं, किसको भगवान का तत्व ज्ञान, इसमें तम पदार्थ, तम पदार्थ और अहम पदार्थ, अहम माने मैं, तम तत्व पदार्थ, तम पदार्थ और तीन पदार्थ, अहम माने मैं जीव सर, अत्म माने तुक जी, एक माया पदार्थ है, तो मैंने भगवत पदार्थ, तत्व पदार्थ, कौन पदार्थ, ये सब का ज्ञान भी हमारे अंदर बन गया, मैं कौन हूं। शुभ कर्म, वर्णाश्रम धर्म का शुभ कर्म भी मेरे अंदर में नहीं है। और दूसरा होगा शुभ कर्म, यहां शुभ कर्म ने भगवत परिचर्या, भगवत भक्त परिचर्या रूपी ये शुभ कर्म, ये भी नहीं है। न तो वर्णाश्रम धर्म का कर्म है, अनशुभ कर्म, शुभ कर्म माने वैष्णव की परिचर्या रूपी के लिए शुभ कर्म जिसे भक्ति होती है, ये भी नहीं है। ये कहो इनमें से कुछ भी मेरे अंतर नहीं है। और क्या सज्जाति अपि अस्ति वा, ऊंचे कुल में मेरा जन्म भी नहीं है। एक सज्जाति होता है, एक दुर्जाति होता है। दुर्जाति माने जो कि कुत्ते का मांस इत्यादि भी खा लेते हैं,
परंतु तो ये सब कुछ अंत जिनको स्पर्श करने से जिनके आचार व्यवहार अत्यंत कुत्सित होते हैं उनको दूर जाते हैं। जिनके छूने से स्नान करना पड़ता है तो मेरी जाति भी कुछ ना कुछ मैं उसी दुर्जाति कुल में पैदा हुआ, क्योंकि भक्ति नहीं है तब इससे बढ़कर के क्या हो। इसलिए हाथ उतार करते ही ये कारण मैं ऐसे दुर्जाति कुल में उत्पन्न हुआ। हिना खादी के साथ के कई अति अच्छे मूलात और सचमुच में मैं बहुत हीन दीन हीन हूं, इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है। तथापि अच्छे दमूल आकर,
तथापि हमारी जो आशा है वो शुद्ध अच्छे,
तथापि हमारी एक आशा है, वो आशा क्या है? वैसा है, ऐसी आशा है अच्छे दमूला, जिसका अब मैं दूर नहीं हूं उस आशा को, अब अपने हृदय से नहीं निकाल सकता।
बहुत लंबी चौड़ी आशा,
वो आशा यह है कि मैं इतना दीनहीन होने पर भी, सब कुछ होने पर भी, ऐसा असाधक हूं, साधक भी नहीं करने वाला, इतना होने पर भी तो ये आपकी अच्छे दमूला जो कृपा है, जो आप जरूर इस पर कृपा करेंगे, बस यही एक आशा है याद मिले। और इसी आशा से हे गोपीनाथ बल्लभ, गोपीजन बल्लभ, व्यर्थते मदाशाई व मां, मेरा हृदय व्यथित हो, कम मिलेंगे कम मिलेंगे, इसको कहते हैं आशाबंध। आशाबंध माने मैं अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उनकी कृपा मिल जाएगी, ये नहीं, बल्कि ये आशा कि वे बड़े अहेतु करुणाशाली हैं, उनकी चारों तरफ में करुणा की वर्षा हो रही है। करुणा की वर्षा नहीं होती ना तो हम जैसे लोग कहां यहां भगवत कथा में, मथुरा धाम में, वृंदावन धाम में हम लोग प्रवेश कर सकते, यह संभव पर नहीं। इसलिए ये भगवान की बहुत ही करुणा है, जब इतना करुणा किया है तो अब थोड़ी सी करुणा वो भी मिले। इसलिए यहां पर कर रहे हैं, एक बात और इसमें कर रहे हैं, भगवान की भक्ति जो होती है वो अहेतु की होती है, कर्म ज्ञान योग तपस्या के अधीन, सब कर्मों के अधीन नहीं होती है। एक महादुराचारी व्यक्ति को भी भक्ति हो सकती है और वहीं से भक्ति करते करते जगत का वंदनीय हो सकता है। वेश्या जो हरिदास ठाकुर के समय अत्यंत घृणित वेश्या, किंतु जब हरिदास ठाकुर के तीन रात हरिनाम श्रवण करने से परम पवित्र महांति हो गई, वैष्णवी हो गई, और उसने कपड़े कपड़े सब रख दिए घर में, ब्राह्मणों को अपना अर्थ सब कुछ दान कर दिया, वो एक वेश्या व्यभिचारी वेश्या, अपना सामान दे दिया दान लिया तो दान कौन दिया? ब्राह्मण आचरणी गति क्या होगी जो ऐसे दान लेते हैं, किंतु वो लेते उनको डर भय नहीं है वो दान दे, और वह न जाने क्या उनकी गति होगी। अब वो उसको देख करके एक वस्त्र धारण करके आई, गंगा स्नान करके और हरिदास ठाकुर के सामने खड़ी हो गई। हरिदास ठाकुर ने उसे कहा कि मैं तो तीन दिन पहले ही चला जाता, बस नाम की महिमा हमको देखनी थी और जगत को दिखानी थी, इसलिए मैं यहां पर ठहर गया थी। अब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है, आप अब देवी हो गई हैं, वैष्णवी हो गई, आप यही रहे, मैं स्थान आपको देता हूं। अब ये तुलसी